ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है सोमवारी विशेष प्रवचन में। वैसे तो आज उतना विशेष प्रवचन नहीं होगा क्योंकि महाराज श्री किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो मुझे सेवा दी गई है। पिछले यहाँ प्रवेश करने के 3 मिनट पहले मुझे पता चला कि मुझे ये सेवा निभानी है। वैसे भी योग्यता नहीं है, फिर भी और जटिल समस्या में भगवान ने रखा है आपको। मुझे तो ज़्यादा समस्या नहीं, मैं कुछ भी बोल दूँगा, झेलना आप लोगों को है। वैसे अर्जुन जिस दुविधा में थे उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है, तो ये सोच के थोड़ा प्रेरणा मिलती है, और इसलिए 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक का भी प्रवेश करते हैं। आप लोगों के पास भगवत गीता की प्रति है, सबके पास 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक, आज उसके ऊपर चर्चा होगी। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम् किमुच्यते। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम् किमुच्यते। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। कोई बोलना चाहेगा? अर्जुन उवाच, और कोई, और कोई? पुनः अनुरोध है सभी, कृपया अपने अपने मोबाइल्स और बच्चे साइलेंट मोड पर रखें ताकि उन लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो प्रवचन से। तो अभी शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा किम क्या तत् व ब्रह्म किम क्या अध्यात्मम आत्मा किम क्या कर्म सकाम कर्म पुरुष उत्तमा हे परम पुरुष अधिभूतम भौतिक जगत च तथा किम क्या प्रोक्तम कहलाता है अधिदैवम देवतागण किम क्या उच्यते कहलाता है। कृपया अनुवाद मेरे बात दोहराएं। अर्जुन ने कहा हे भगवान हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है सकाम कर्म क्या है या भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है, साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिसे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश अथवा निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वो ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। कोई भी मंदिर आते तो किस उद्देश्य से आता है, क्यों आता है? बस भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन। वो तो हमारा पत्रिका भी है इस्कॉन का, इसका पिछला अध्याय, उसका नाम क्या है? भगवत ज्ञान। इसका पिछले अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवत गीता के प्रमुख 18 अध्याय है, मुख्यतः 18 ही अध्याय हैं इसमें। 18 अध्याय में प्रथम 6 अध्याय हैं किसके बारे में? कर्म योग के बारे में। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो है भक्ति योग के बारे में, अर्थात 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय हैं भक्ति योग के बारे में हैं, और 13 से लेकर 18 तक के अध्याय हैं ज्ञान योग के बारे में। तो ये समझना चाहिए कि अगर भगवत गीता का उद्देश्य आप अगर भूमिका में पढ़ेंगे, अवतारिका में पढ़ेंगे भगवत गीता का, तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है कौन बता सकता है? आप 8वें अध्याय पे पहुंच के अभी तो जाना बहुत जरूरी है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, भगवान को कैसे सरेंडर करें और आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ संबंध कैसा जोड़ा जाए और भगवान की ओर बढ़े कैसे और क्या अपने को जानने के लिए, उन्होंने बताया आत्म साक्षात्कार और कृष्ण का भक्त बनने के लिए और भौतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और एग्जॉस्टेड दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। वैसे भगवत गीता की भूमिका में ही लिखा है ये, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता को, भगवत गीता का मूल विषय वस्तु है कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि, अथवा कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। घूम फिर के आप सबने अपने अपने तरीके से संकेत दिया था, लेकिन स्पष्ट रूपेण अगर बोलेंगे तो भगवत गीता में ही वर्णित है कि भगवान की इंद्रियों की तुष्टि कैसे की जाए, यह विषय वस्तु मूल भगवत गीता का। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान यदि हमें अनुकूल करना है तो उसके लिए कम से कम यह अनिवार्य है कि तात्विक दृष्टि से यह समझें कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्यथा इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। कि हमने 18 अध्याय पढ़ लिए और बोले कि कोई ऐतिहासिक चरित्र थे कृष्ण करके, एक व्यक्तित्व है, बहुत महान राजा थे, यदुवंशी थे, उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाएं बताई हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जैसे अंग्रेजी में अगर आपने, कितने लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है कॉलेज में? कुछ लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें कंडीशन आता है नेसेसरी बट सफिशियंट, नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, अर्थात अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं, अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं। तो भगवान के बारे में इतना सब समझना कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, इतना तो कम से कम अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है, तब पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होगा यदि हम तत्व रूपेण कम से कम इतना समझे कि कृष्ण न सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र व्यक्तित्व थे, न सिर्फ यदुवंशी राजा थे, अभी तो क्या थे, क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। तो इसको जानने के, इसको जाने बिना हम भगवत गीता के विषय वस्तु को समझ नहीं सकते, क्योंकि जब ये समझेंगे तत्व रूपे ना कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है जिन्होंने भगवत गीता का उद्बोधन किया है, तब हम समझेंगे कि भगवत गीता का मूल विषय वस्तु है कि कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि। अन्यथा 18वें अध्याय में आकर भगवान क्यों बोलेंगे कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ। अब कोई राजा ऐसा बोलेगा आपको अच्छा लगेगा क्या? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अचानक आपको बोलेगा कि सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आओ, हम नहीं आएंगे। तो जो व्यक्ति बोल रहा है तो उस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो हमें ये श्रद्धा जगा सके, जता सके कि हम उनके शरणागत हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक जान लें कि 6 अध्याय तक अर्जुन को भगवान ने यह नहीं बताया कि तुम मेरे शरणागत हो, उल्टा दूसरे अध्याय के शुरू शुरू में एक बार भगवान संकेत देते हैं, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर, युक्त आसीत मत पर, युक्त आसीत मत पर, ऐसा बताते हैं भगवान दूसरे अध्याय में। पहली बार संकेत दे रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे शरणागत हो, युक्त आसीत मत पर, मेरा मुझ पर लगाओ, मैं ध्यान लगाओ। उसके बाद क्रमशः भगवान ये नहीं बताते कि मेरा शरणागत हो, मेरा शरणागत हो, भगवान ये बोल रहे हैं कि किस प्रकार, जैसे तीसरा अध्याय है तीसरा अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। फिर उसके बाद आगे जाकर कृष्ण भावना मृत में कर्मयोग उसको और संपुष्ट कर रहे हैं। क्रमशः लोगों को इस पड़ाव तक ला रहे हैं कि कर्मयोग अर्थात फलों से निरासक्त होते हुए परम सत्य की कांक्षा करते हुए किस प्रकार कार्य करें। लेकिन विशेष वस्तु भगवद गीता यथारूप की यह है, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित इस ग्रंथ का, कि भले ध्यान योग बोले, कर्मयोग बोले, भक्ति योग बोले, ज्ञान योग बोले, बुद्धि योग बोले, उन सब के लिए श्रील प्रभुपाद एक एक वाचक का प्रयोग करते हैं, संकेत देते हैं। क्या वाचक है वो? कृष्ण भावनामृत। चाहे कर्मयोग हो कृष्ण भावनामृत, ध्यान योग हो कृष्ण भावनामृत, भक्ति योग हो कृष्ण भावनामृत, वो तो आगे आएगा भक्ति योग, 12वें अध्याय अभी शुरू हो गया भक्ति योग, या बुद्धि योग करके एक अध्याय है उस पे भी, उसको भी भगवान श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत शब्द से संकेत देते हैं या भक्ति से संकेत देते हैं उस शब्द से। कहने का उद्देश्य है कि हर प्रकार के योग पद्धतियों का परिणत फल क्या है? अंततो गत्वा कृष्ण की भक्ति। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरते हुए जितने भी जितना भी जल आकाश से गिरता है, जिस प्रकार वो सागर में गिरता है, उसी प्रकार जितने भी देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं किसी भी प्रकार का, उन सबका परिणत फल क्या होना चाहिए? केशवम प्रतिगच्छति, भगवान तक पहुंचना चाहिए, वो केशव तक पहुंचना चाहिए। या अन्यत्र भगवत गीता में कई बार यह श्लोक आता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है यह श्लोक रूप गोस्वामी पाद द्वारा, और अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सभी प्रकार की उपाधियों को त्यागो। उपाधि क्या होता है? मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं पौधा हूं, या मैं मैनेजर हूं, या मैं डैमेजर हूं, जो भी है। ये सारे जितने भी उपाधियां हैं, डेजिग्नेशन हमने अपने ऊपर थोपा है या हमारे प्रिय लोगों ने हमारे ऊपर थोपा है, और हमने अपने आप को मान लिया कि हम यही हैं। तो क्रमशः अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के नवम श्लोक में भगवान को यह बताया कि मुझे यह पता नहीं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। पृच्छामि धाम धर्म सम्मूढ चेता, मैं अपने धर्म के बारे में सम्मूढ़ हूं, मेरी बुद्धि ये नहीं जानती कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पृच्छामि धाम, मैं पूछ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये श्रेयसाम निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? ये कब पूछ रहा हूं मैं, कैसे पूछ रहा हूं? शिष्यस्तहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं और एक शरणागत आत्मा हूं, आप कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तब तक अर्जुन ने कई प्रकार के तर्क वितर्क प्रस्तुत किए कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि कुल का जब नाश होता है तो कुल की स्त्रियां असुरक्षित होती हैं, उसे वर्ण संकर होता है, और ये पाप है अपने बंधु मित्रादियों को मारना, और फिर इनको मैं अगर मार डालूंगा तो मैं अपने राज्य को किस प्रकार भोग पाऊंगा, या फिर मैं इनको कैसे मार सकता हूं, ये तो मेरे संदत सहचारी है, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, इनको मैं कैसे इनसे मैं युद्ध कर सकता हूं। तो कृपा अनुकंपा कंपैशन, ऐसे अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए, और अंततः गतो ये बताया कि मैं अनिश्चित हूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो इसलिए आप मुझे आदेश दें, उपदेश दें। तब तक भगवान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया कि आप मुझे उपदेश दे सकते हैं, तब भगवान ने क्या बताया? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, तुम्हें यह कृपण दुर्बलता कहां से आई? नपुंसक जैसी बातें करते हो तुम। फिर बोले अशोचवान अन्न शोचोस्तम प्रज्ञा वादांश भाष्य से गतासून अगतासून से नानुशोचंदे पंडिता, पंडित जैसे बातें करते हो और तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो रोने लायक नहीं है या दुख दिखाने लायक नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है न जीवित के लिए रोता है न मृत के लिए रोता है। तो गुरु का पद भगवान ने संभाल लिया वहां पर। तो आगे बढ़ते बढ़ते अर्जुन को कर्मयोग के ज्ञान से और अवगत कराते हुए भगवान आगे छठे अध्याय तक पहुंच के, छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया गया। ध्यान योग में यहां पर बताया गया कि किस प्रकार वन जाते हुए भृकुटियों के बीच नासिका के अग्र में अपनी दृष्टि को लगाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जंगल में जाना है, अपने प्राण वायु को केंद्रित रखना है, इतना सब करते हुए तुम्हें योग की प्रक्रिया का पालन करना है। तो ये सब सुन के अर्जुन ने बताया कि आप जो पद्धति बता रहे हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये तो वायु को भी नियंत्रण में करना आसान है, लेकिन मैं मन का नियंत्रण में ला नहीं सकता। तो भगवान ने बताया अभ्यासेनस्तु कौन्तेय या वैराग्येनस्तु उच्यते। तो अभ्यास से और वैराग्य से तुम अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और वैराग्य दिखाओ। किन वस्तुओं से? उन वस्तुओं से जो आध्यात्मिकता के लिए अनुकूल नहीं है। उन कार्यों से जब वैराग्य दिखाएंगे और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो मन का नियंत्रण हो सकता है। तो आगे जाते हुए अभी तक तो कर्मयोग की बात चल रही थी, सातवें अध्याय में भक्ति योग प्रारंभ हो रहा है। तो भक्ति योग का उस अध्याय का शीर्षक ही भगवत ज्ञान है, और भगवान के ज्ञान के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे रुक्मिणी जी ने सुना था, श्रवण किया था एक ब्राह्मण से भगवान कृष्ण के विशेष गुण वैशिष्ट्यों के बारे में। भगवान के असंख्य गुण हैं, जैसे भगवान का भी आविर्भाव दिवस आने वाला है। हमारे भगवान जिस दिन धरातल पर अवतरित हुए थे, वैसे तो भगवान ये क्या बोलते हैं, हम सबके बाप हैं। सर्व योनिश कौन्तेय मूर्ते संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं भगवान बोल। फिर भी भगवान की विशेष कृपा है कि वो अपने अवतरण लीला भी दिखाते हैं, जन्म होने वाली लीला भी दिखाते हैं, जिससे कि हम उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएं। भगवान जो भी करते हैं, भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। भगवान का हर कार्य इस उद्देश्य से है कि हमको किस प्रकार उनकी तरफ आकर्षित करें और हमें शुद्ध करें, यह उद्देश्य। तो भगवत गीता हमको लगेगा कि बहुत बड़ा तात्विक ग्रंथ है या दार्शनिक ग्रंथ है, वो तो है ही, लेकिन भगवत गीता का मूल विषय वस्तु है कि भगवान से कैसे हम प्रेम जगाएं, किस प्रकार हम अधिक प्रेम कर सकते हैं भगवान से। क्योंकि हर धर्म के दो उद्देश्य हैं। कौन कौन है, कौन बताएगा? कोई भी धर्म है, कम से कम दो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए। क्या क्या है? चाहे ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कुछ भी हो, मानव प्रेम। भगवत प्रेम मिल गया तो मानव प्रेम अलग करना है, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं मैं सबके पिता हूं और मामा एवं से जीव लोक है, मेरे अंश हैं जितने भी जीव हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि भगवत प्रेम हमने जगा दिया तो अपने आप उसमें मानव प्रेम आए। जो भगवान से प्रेम करता है वो ऐसा नहीं कि भगवान के अंश से, भगवान के संतान से द्वेष कर सकता है, ऐसा है तो भगवान से प्रेम नहीं करता। दोनों नहीं हो सकता एक साथ। जो भी है अच्छी बात है। एक और बात कौन सी है? धर्म के प्रति आस्था, ठीक है, अच्छा। उसे क्या लाभ होता है? गलत नहीं है आप, उसे क्या लाभ होता है बताइए ना, उसे क्या लाभ होता है? धर्म के प्रति आस्था रखने से क्या लाभ होता है? अधर्म नहीं करते, सिंपल है। मतलब पाप वृत्ति से सुरक्षा, पाप वृत्ति से कैसे बचें और भगवत प्रेम कैसे जगाएं, ये है मूल उद्देश्य किसी भी धर्म का। मुख्य धर्म तो सनातन धर्म है, लेकिन समय काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि धर्म भगवान के मुखारविंद से प्रकट होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए 2017 साल पहले ईसा मसीह आए थे, ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ था, और कुछ 620 एडी के करीब नबी पैगंबर आए थे, वो इस्लाम धर्म का उन्होंने प्रचार किया, या उसे 2500 साल पहले बुद्ध देव आए थे। तो स्थल काल और परिस्थिति के अनुसार से धर्म प्रकट होता है, लेकिन मूल धर्म सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म है वेबस्टर्स डिक्शनरी या चेंबर्स डिक्शनरी, बाकी अलग अलग स्थल काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग धर्म प्रकट होते हैं, वो पॉकेट डिक्शनरी, ऐसे छोटे छोटे डिक्शनरीज वगैरह आते हैं, उन सब में आते हैं। मूल तत्व सब में आते हैं, क्या क्या है, भगवत प्रेम कैसे जगाएं और पाप वृत्ति से कैसे बचें, ये सब में आता है। और जो धर्म ये दो तत्व नहीं बताते वो धर्म नहीं है, प्रामाणिक धर्म नहीं है, तो छोटा सा टेस्ट है वो। लेकिन भगवत ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। किसी से किसी के बारे में आप जानोगे तब उनसे प्रेम बढ़ेगा कि बिना जाने उनसे प्रेम बढ़ सकता है, कब, जानने से। तो रुक्मिणी जी को पहले, रुक्मिणी जी ने पहले कृष्ण के बारे में कभी दर्शन किया भी नहीं था, लेकिन ब्राह्मण से अन्य लोगों से रुक्मिणी जी ने श्रवण किया कृष्ण के गुण वैशिष्ट के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। जैसे जैसे श्रवण करती रही क्रमशः उनके हृदय में प्रेम बढ़ने लगा, और इतना प्रेम उमड़ आया कि वो स्वयं भगवान को उन्होंने आमंत्रित किया कि मेरा हरण करके मुझे स्वीकारिए। तो कहने का उद्देश्य है कि प्रामाणिक शास्त्र से, प्रामाणिक भक्तों से, वैष्णवों से, गुरु से जब हम श्रवण करते हैं, भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे सप्तम अध्याय का शीर्षक ही भगवत ज्ञान है, और जब ये भगवत ज्ञान का परिणत फल क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेने में हमें समर्थ बनाता है, तत्पर बनाता है भगवत ज्ञान। तो इसलिए ज्ञान के बिना हमें भगवत प्राप्ति संभव नहीं है हमारे स्तर पर अभी, क्योंकि हम सब नवसिखिए हैं। हो सकता है आप में से कई लोग पारंगत हैं, लेकिन सामान्यतः सारे लोग नवसिखिया हैं, इसलिए ज्ञान के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन किस प्रकार का ज्ञान, ये ज्ञान की वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ जो है कृष्ण ही है, ये ज्ञान हमें प्राप्त होना है। और इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चाहे मन, चाहे शरीर, चाहे आत्मा, चाहे बुद्धि, इन सब के लिए सूचक वस्तु है आत्मा। तो यहां पर पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, परब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधिभूतम भौतिक जगत क्या है, असली में इसका क्या विश्लेषण क्या है। तो इस सब के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। कहने का उद्देश्य है कि जीवसत तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जन्म अगर अब जब हमको मिला है तो इसका सदुपयोग हमें सही प्रश्नों के उदाहरण से शुरू करना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें कम से कम ये प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, अगर मैं ब्रह्म हूं और भगवान भी ब्रह्म है तो क्या हम दोनों एक हैं, तो अगर परब्रह्म है तो परब्रह्म और मेरे में क्या अंतर है, और मुझे क्या कर्म करने हैं और मैं क्या कर रहा हूं, वो कर्म है कि अकर्म है कि विकर्म है, क्या है, और भगवत प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है। तो इस अध्याय में ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, और ये असली आध्यात्मवादी या आध्यात्म त्रिष्णु के लिए, जिज्ञासु के लिए ये योग्यता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछें, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मनुष्य और पशु के बीच का अंतर यह है कि मनुष्य प्रश्न कर सकता है और सही प्रश्न, वो भी धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशु भी समानः। तो बिना धर्म, धर्म जो है मनुष्य का लक्षण है, मनुष्य योनि का लक्षण है, और धर्म का अर्थ है कि प्रश्न पूछना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जबकि मनुष्य शरीर मिला है, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करिए। तो अर्जुन एक प्रकार से प्रामाणिक बद्ध जीव है, आचार्य बताते हैं हम सबके प्रतिनिधि हैं, हम सब बद्ध जीव हैं, अर्जुन प्रामाणिक बद्ध जीव है, सामने खड़े होकर भगवान से वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिनसे हमारा मोह दूर हो जाए। अर्जुन तो मोहग्रस्त नहीं थे, ये गलतफहमी है, अर्जुन को मोहग्रस्त किया गया ताकि हम बद्ध जीव जो मोहग्रस्त हैं हम उससे बच सके। इसलिए भगवत गीता के अंत में अर्जुन बताते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। मेरा मोह जो है नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति वापस आ चुकी है। हम सब ना मेले में खोए हुए बच्चे हैं, बता दें ना, ऐसे भूल गए हम, हमारा संबंध भूल चुके हैं पिता के साथ। एक्सीडेंट होता है तो फिल्मों में वगैरह में आता है ना, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, हमें पता नहीं अभी ऐसे ही। तो ये स्मृति वापस आ जाती है भगवत ज्ञान से, और भगवत ज्ञान से स्मृति आ जाती है तो भगवत प्राप्ति होती है। स्थितोस्मि गत संदेहा, मैं स्थित हो गया हूं, मेरा शक सकल गए। कैसे? त्वत् प्रसादान मया च्युता, भगवत ज्ञान क्योंकि प्राप्त हुआ था अर्जुन को, इसलिए आगे से भगवान उनके एक एक प्रश्न का और उत्तर देंगे, भगवत प्राप्ति के बारे में भी, किस प्रकार भगवान के पास पहुंचे। जैसे बताया गया कि कठोपनिषद में बताया गया कि एक ही पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी उस पेड़ के खट्टे और मीठे फल खा रहा है और दूसरा पक्षी वहीं बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और पहला पक्षी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है और बार बार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाके बैठ रहे हैं। लेकिन जब वो पहला पक्षी जो फल खाता है दूसरे पक्षी की तरफ देखता है, तब वो संतृप्त होता है, तुष्ट होता है। वो पहला पक्षी जो फल खा रहा था वो है जीव आत्मा, और दूसरा पक्षी जो कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन उसके साथ था हर स्थिति में, वो है परमात्मा। और जो फल जो खा रहा था वो सुख और दुख के हैं, और वो पेड़ हर शरीर है, एक के बाद एक शरीर में प्रयाण करते रहते हैं। जब तक ये भगवत ज्ञान नहीं मिलता और भगवत प्राप्ति नहीं होती, जब तक भगवान के तरफ हम देखते नहीं है, परमात्मा की तरफ हम देखते नहीं है। कृष्ण से मुंह मोड़ लिया हमने, लोग पूछते हैं कि बुरा क्यों होता है, बुरा क्यों है, सिर्फ सबको अच्छा होना चाहिए, व्हाई इज देयर ईविल, या आसुरी प्रवृत्तियां क्यों होती हैं, गलत काम क्यों होते हैं। आप बताइए, सूरज में अंधेरा है क्या, है कि नहीं है? प्रभुपाद से किसने प्रश्न पूछा था, व्हाई इज देयर ईविल, तो प्रभुपाद ने उनका एक ही शब्द में उत्तर दिया, इज देयर डार्कनेस इन द सन, सूरज में अंधकार नहीं है। अर्थात सूरज से आप मुंह मोड़ लेंगे तो छाया आएगी। कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार, जहां कृष्ण नहीं है, अर्थात ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर कृष्ण नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर हम कृष्ण को शामिल नहीं करते हमारे जीवन में, उसी को माया बोलते हैं। माया का कोई सींग और पूंछ नहीं होते, कृष्ण के अभाव को ही माया बोलते हैं, या कृष्ण के उपस्थित्व को हम ना समझें उसी को माया बोलते हैं। तो इस अध्याय के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर आता है कि ध्यान रखिए, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अर्जुन ऐसा नहीं पूछ रहे कि मेरे मित्र तुम मुझे उत्तर दो, इसका आंसर क्या है, मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर मालूम नहीं। अब तक कृष्ण को अर्जुन को पता चल गया है, वैसे पहले ही पता था, लेकिन अब तक अर्जुन को एक क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। किम कर्म पुरुषोत्तमा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अब पुरुष है, पुरुष मतलब भोक्ता, एकमात्र पुरुष, एकमात्र स्वामी, एकमात्र नियंता कृष्ण है, वो अर्जुन जानते थे। और इस प्रकार के व्यक्ति से जब जिज्ञासा करेंगे तो उत्तर मिलेगा। हर कोई व्यक्ति जीवन के उद्देश्य का सफलता से उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं है। जिसने जगत की सृष्टि की है, अर्जुन पूछ रहे हैं भौतिक जगत क्या है, भौतिक अभिव्यक्तिकरण क्या है, मेटीरियल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका उत्तर कौन दे सकता है? वही व्यक्ति दे सकता है जो सृष्टि करता है इस सृष्टि का, और कोई बता भी नहीं सकता। इसी से कृष्ण का हम समझ सकते हैं। अभी एक व्यक्ति था जिसको राजा बनने का अवसर मिला, कई लोगों ने सुना होगा ये कहानी, आप लोगों ने, राजा बनने का अवसर मिला लेकिन सिर्फ एक साल के लिए। कितने लोगों ने सुना है? सुना, सिर्फ एक साल के लिए उसको राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उसके पहले जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, एक साल खूब ठाट बाट से राज किया, सारा ऐशा आराम किया, और एक साल के अंत में जो एक साल गाया वो लाइफ भर रोया। उसके बाद उसको जंगल जाना पड़ा, जंगल में भूत प्रेत हैं, जो भी है पशु हैं, क्या क्या बोलते हैं, बहुत दुष्ट पशु हैं, शेर चीते, तो मतलब उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अब तक जितने भी लोगों को राज का भार मिला उन सबको यही हाल हुआ, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, एक साल अवसर मिला राज संभालने का, पूरा साल वो जंगल में बिताया उसने। जंगल में क्या किया, खेती प्रारंभ की, फल का आंगन लगाया, बहुत सारे फल, खेती सारा पूरा सेटअप कर दिया, बहुत बड़ा किला बना दिया वहां पे, बहुत बड़ा किला, प्रहरी लगाए, सेना तैयार कर ली, पूजा की सामग्री, मंदिर सब तैयार कर लिया वहां पे, ताकि एक साल, क्योंकि उसके बाद जो है उसके पास सुविधा थी, ये सब करने की सुविधा थी, धन था उसके पास, राजा था। तो अब जबकि राजा बनने का अवसर मिला, उसने उसका सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य का पूरा योजना संपुष्ट कर दिया उसने, ताकि एक साल बाद जब उसको जंगल जाने के लिए बोला तो हंसते हंसते गया। इसी प्रकार अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे मैं कौन हूं, भगवान कौन है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, मुझे क्या कर्म करने हैं, परब्रह्म क्या है, ये प्रश्न हम नहीं पूछेंगे। तो एक समय आएगा जब जंगल जाने का समय आएगा, तब हमें पता नहीं चलेगा कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हमें कहां पहुंचना है, हमारा क्या हाल होगा, कुछ पता नहीं होगा, फिर पूरा अंधेरे में रहेंगे। मृत्यु अंतिम परीक्षा है, अंतिम क्या, एकमात्र परीक्षा है, बाकी सब परीक्षा ही नहीं है। तो मृत्यु के समय हम जीवन हमने कैसे बिताया, इसकी परख होती है, इसकी परीक्षा होती है कब, मृत्यु के समय असली परीक्षा है। तो उसके लिए तैयार करने, जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, गाइड क्वेश्चन बैंक लेके लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, सवाल सवाल का आंसर ढूंढते रहते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन के इस प्रकार के सवालों का जवाब ढूंढना है, ताकि अंतिम समय जब हमें राज छोड़कर जंगल जाना पड़े, शरीर छोड़ के मृत्यु पाना पड़े, तब हम तैयार हैं। इसलिए यहां पे बताया गया, इंद्रिय है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धियों के बुद्धि के ऊपर हम हैं। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रिय व्यपरो मना मनसस्तु परो बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। हम ये नहीं है, हम इंद्रिय नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। भले ही सभी शब्दों का सूचक क्या है, आत्मा, लेकिन हमारे गलत में भी क्या है, हम सोचते हैं कि ये शरीर हम हैं, मतलब आत्मा, गलत गलत आत्मा। मन हम हैं, गलत आत्मा। ये बुद्धि मैं हूं, गलत। असली मैं वो हूं, उस चेतनात्मक स्फुलिंग जो इस शरीर का धारी है, देहधारी है, देही है, शरीरी है, शरीर नहीं है, देह नहीं है, हम वो हैं। कुछ भी नाम दो, रूह, सोल, जीवा, आत्मा, ब्रह्मा, सब सूचक है आत्मा के। और हम ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म नहीं है, सब ब्रह्म हैं, ब्रह्म सत्यम, हम सब ब्रह्म वस हैं, सच्चित आनंद से संपुष्ट हैं, लेकिन पर ब्रह्म नहीं है। जिस प्रकार सागर का जल एक लोटे में लिया तो वो भी खारा होता है, लेकिन सागर का जल सागर का जल है। जिस प्रकार सोने का एक कण, उस पे भी सुनहरापन है, लेकिन सोने का एक खान देखोगे उसमें तो सोना ही सोना है। उसी प्रकार भगवान विभू हैं, हम अणु हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते करते आगे जाकर जब हम समझेंगे कि वो भगवान जिनकी इंद्रियों की तुष्टि करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, और उनकी तुष्टि मैं करूंगा उनकी इंद्रियों की, तभी मैं खुश होऊंगा। हम सब क्यों है जीवन, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है, खुशी। सबको सुख चाहिए, असली सुख क्या है नहीं जानते, ये समस्या है। तो भगवत गीता वो डॉक्यूमेंट है, वो मैनुअल है, जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। और सुख की प्राप्ति मतलब भगवत प्राप्ति, जो ये इस अध्याय का शीर्षक। हरे कृष्णा। मैं आपकी तरह देख रहा था, थाली बजा रहा है कि नहीं करके। ओके, किसी का कोई प्रश्न है, सिवाय है कि प्रसाद में क्या है, कई लोग उठ के जा रहे हैं, क्या है प्रश्न, कुछ है किसी के? हमारे गुरुदेव बताते हैं कोई प्रश्न नहीं पूछता प्रवचन के अंत में, तो दो ही कारण हो सकते हैं, या सब कुछ मालूम है या कुछ नहीं मालूम है। मैं तो यह मानता हूं कि अगर प्रवचन ठीक था तो कुछ सवाल आएंगे, तो मेरे हिसाब से मैंने ठीक से समझाया नहीं आपको, इसलिए आपके प्रश्न नहीं है। हाँ बोलिए, बहुत कृपालु हैं आपने, मेरे मेरे मिथ्या अहंकार को बचाया आपने। हाँ भगवान ने बताया। कौन से घर? वही कौन सा घर, किस जन्म का, जो भी है, वो ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन मैंने खुद पूछ लिया। बात यह है कि भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में नहीं बताया कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरे पास आओ। पहले भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया, फिर ध्यान योग सिखाया, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों सिखाया, और भक्ति योग को छुपा के रखा, सर्वोच्च ज्ञान जो कि सबसे मूल्यवान है इसलिए बीच में रखा, 6 अध्याय दोनों साइड में ज्ञान और कर्म से आवृत करके बीच में भक्ति को छुपा के रखा ताकि वो खो ना जाए। साथ ही साथ ज्ञान और कर्म दोनों से वो स्पर्शित भी है, ताकि ज्ञान और कर्म के बिना भक्ति वैसे भी करते नहीं है, दोनों चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर जो करेंगे वो है भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय। अभी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आकर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरे पास आओ। तब तक अर्जुन इसी प्रकार कई तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि भीष्म देव को मैं कैसे मारूं, द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं, वो तो मेरे घर वाले हैं, मैं घर वालों को कैसे छोड़ू। आप ही का प्रश्न है, थोड़ा और जटिल थी उनकी समस्या, आपको सिर्फ घर छोड़ने की बात कर रहे हो, वो तो घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, घर वालों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको जितनी समस्या थी आपकी समस्या तो उतनी है भी नहीं, छोटी समस्या है, तो उनको मारने की बात चल रही है। तो कहने का उद्देश्य है कि जीव भगवान को भूलकर अपने आप को शरीर समझ बैठता है, और शरीर और विस्तृत शरीर अर्थात मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा ग्रह, मेरी पृथ्वी, मेरा वातावरण, इस प्रकार के कई कई अपनी छोटी छोटी समस्याएं वो खुद खड़ा कर लेता है। वो सोच लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य है पृथ्वी को बचाना, ये जीवन का परम लक्ष्य है मेरे देश की धरती, तो ये सब है। लेकिन वो बुजुर्ग औरत जो कि सोने के पिंजड़े को पॉलिश कर रही थी रोज, लेकिन अंदर तोते को खाना नहीं खिलाया, 15 दिन बाद क्या हुआ, सोने का पिंजरा बहुत पॉलिश्ड है, अंदर तोता मर गया। एक महामूर्ख था, महामूर्ख जो है इस प्रकार चुना गया कि एक राजा के गुरु ने बताया कि तुम भक्ति करो, आध्यात्मिकता करो, तो उसने बताया कि मुझे, मेरे लिए इसके पास समय नहीं है, तो उसने बताया तुम इतना करो कि मैं जो बोल रहा तुम्हारे देश के सबसे महामूर्ख को एक माला पहनाओ और हर महीना उसके जो पालन पोषण है उसका पैसा दे दो। पर जीवन भर करते रहे राजा, और जीवन के अंत में जब मृत्यु की शैया पे थे तो सबको बुलाया अपने पास, इस मूर्ख को भी बुलाया। मूर्ख ने पूछा राजा, राजा हाथी ले जा रहे हो ना, तो क्या बोल रहे हो, हाथी को कहाँ ले जा सकता हूं। फिर बोले कि पैसा तो बहुत है आपके पास, मजा करोगे आप जाते जाते जहां भी जा रहे हो। पैसा पैसा कहाँ लेके जाऊंगा, आपके तो 3-3 रानियां हैं, उनको तो ले जा रहे हो ना। अरे छोड़ो, जहां जा रहा हूं मैं किसी को नहीं ले जा सकता, ये महामूर्ख है, इसको कुछ खिला के भेज दो। तो इसने बताया कि आप जीवन भर इन चीजों को इकट्ठा कर रहे थे जिनको आप साथ लेके नहीं जा सकते, मतलब सबसे महामूर्ख मैं नहीं हूं, आप हो। चलो कोई तो ताली बजाए। कहने का उद्देश्य यह है कि परिवार का ध्यान रखना अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपका परिवार कितना है, सिर्फ वो 4-5 सदस्य, वही आपका परिवार है। इतने संकुचित मनोभाव क्यों है हम में, हमारा परिवार इससे भी बड़ा है। और भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, भक्ति का मतलब है जोड़ना। सभी प्रकार के धर्मों को त्यागो का मतलब है सभी प्रकार के स्वार्थ धर्मों को त्यागो, सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के धर्मों को त्यागो, सभी प्रकार की विस्तृत इंद्रिय तृप्ति के धर्मों को त्यागो, और उन सभी धर्मों को त्यागो जो मुझसे शरणागत होने से तुमको रोकती हैं, उन सबको छोड़ो। भगवान का शरणागत होना अंतिम समय में, कई लोग बोलते हैं मेरे परिवार मेरे सामने होना चाहिए, सब होना चाहिए, उनके सामने मैं शरीर छोड़ूंगा, इससे बड़ी गलत हो ही नहीं सकती। परिवार सामने होना अच्छा है लेकिन परिवार को सामने परिवार का चिंतन करते करते अगर शरीर त्यागेंगे तो एक और परिवार मिलेगा अगले जन्म में, क्योंकि भगवान बता रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में जो चेतना हमारे मन में है, जो चेतना हम में है, उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी अपने परिवार छोड़ के मंदिर आ जाओ, हमारे पास उतनी जगह नहीं है। आप इस्कॉन में देखोगे तो 99% लोग गृहस्थ भक्त हैं, ये हमारे जैसे वेदांत प्रभु हैं, सत्यनाथ प्रभु, यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं जैसे रेवतीपति प्रभु हैं, बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे, अद्वैत मूर्ति प्रभु, व्हाट इज योर नेम प्रभु, अद्वैत व्हाट योर नेम, अद्वैत समथिंग ना, अद्वैत चरित्र प्रभु, हाँ यूर ऑल्सो देयर। तो कई भक्त हैं ऐसे जो भक्ति में रहते हुए अपने परिवार को संभाल रहे हैं। अर्जुन भी ग्रस्त है, और कृष्ण जब कृष्ण ने भगवत गीता का उद्बोधन दिया, कृष्ण भी ग्रस्त आश्रम का पालन कर रहे थे। तो भगवत गीता कुछ सन्यासी के लिए नहीं है, सन्यासी के लिए भी है। मुख्य उद्देश्य यह है कि कृष्ण की प्रसन्नता कैसे हो, वो है सभी धर्मों को त्यागना, मात्र मेरे शरण में आओ वो ज्यादा जरूरी है। आपने सभी धर्मों को त्यागा और कृष्ण के शरण में नहीं गए तो क्या फायदा, हा? इससे बेहतर है कि कृष्ण के शरण में चले जाओ, अपने आप को पता चलेगा कि कौन सा धर्म आपके लिए योग्य है, कौन सा धर्म आपके लिए नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कृष्ण के शरणागत होना, वो कर लेंगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। आराधिदात आराधितो भगवान तपसा ततक्किम, नाराधितो भगवान हरि तपसा ततक्किम, अंतर बहि यदि हरि तपसा ततक्किम, नांतर बहि हरि यदि तपसा ततक्किम। इसका मतलब क्या है, भगवान की भक्ति आपने नहीं की तो बाकी सब तपस्या करके क्या फायदा, और आपने भगवान की तपस्या भगवान की भक्ति कर ली तो बाकी सब तपस्या का क्या काम। आपने ये समझ लिया कि भगवान सब जगह है तो बाकी किसी भक्ति की क्या जरूरत है, और लेकिन आपने भगवान की भक्ति कर ली तो आप ये भी समझ जाएंगे कि भगवान अंदर बाहर सब जगह है। कहने का उद्देश्य है सम सिद्धिर हरि तोषणम, आप जहां भी रहते हैं, लास्ट में आपकी सांत्वना के लिए एक श्लोक बोल रहा हूं कि ब्रह्मा जी ने बताया है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्लियर है। उन्होंने बताया कि ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंत एव जीवंत सन मुखरित भवती वार्ता स्थाने स्थितम शुद्धिगतान तनुवान मनोभिर ये प्रयासिता अजितो जितोपिसित त्रिलोक्यम। आप ज्ञान और कर्म के इन प्रयासों से इधर उधर कुछ धन ये वो सब इकट्ठा मत करो, करोगे तो ठीक है लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिस जगह है उसी जगह में रहते हुए जीवंत सन मुखरित भवती वार्ता, अपने जीवन को कृष्ण कथा से संपुष्ट करिए, भर डालिए, आपके जीवन में कृष्ण कथा दीजिए, अधिक से अधिक भगवत ज्ञान दीजिए, इतना भगवत ज्ञान दे दीजिए कि आपको यह लगेगा नहीं कि आप भगवान के लिए कुछ छोड़ रहे हैं। क्योंकि भगवान के लिए क्या छोड़ेंगे, सब कुछ भगवान का है, आप क्या छोड़ेंगे भगवान के लिए, सब कुछ भगवान का है, उल्टा भगवान का जो वस्तु है वह अपने लिए प्रयोग कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं। तो परिवार आपका तब आपका होता है जब आपका परिवार भगवान का होता है, क्योंकि आपका और कोई नहीं है, आपका सिर्फ भगवान है, और जब आप अपने परिवार को भगवान से जोड़ते हैं तो वो परिवार आपका होता है, तब तक वो आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार तब होता है जब वो भगवान से जुड़ा रहता है। इसलिए भक्ति करने के लिए कुछ मत छोड़िए माता जी, सब जोड़िए, परिवार को जोड़िए भगवान से, भगवान से जितना अधिक जोड़ेंगे बाकी सारे धर्म छूट जाएंगे, ये बात है, बाकी सारे धर्म छूट जाएंगे। सरेंडर, नो टाइम फॉर मोर क्वेश्चंस आई गेस। अरे नहीं, कोई सवाल है, देख रहा था ताली के लिए, नहीं देख रहा था।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।